पद्म पुराण के भूमिखंड के कथा के प्रसंग में राजा वेन को भगवान विष्णु का उपदेश होता है, यज्ञ करो, दान करो, नित्य और नैमित्तिक दानों को करते रहो, पुत्र के जन्मोत्सव के समय में दान करो, क्योंकि जो थोड़ा सा किया गया दान है वो बहुत बड़े भय को दूर करता है, और यदि अभय बनना चाहते हो तो दान हमेशा कर दो, क्योंकि जिस प्राणी के पास, जिस व्यक्ति के पास विपत्ति भगाना हो तो जो तुम्हारे पास है वो सर्वस्व दान कर दो तो विपत्ति चली जाती है। हम यदि दूसरे का धन लेते हैं तो जिसका हम धन लेते हैं धन के साथ उसका जो पाप है वो भी हमारे पास चला आता है, तो धन देने वाला जिसको देता है उस पर कृपा नहीं करता है, वो अपना पाप देता है, जो दुष्कृत है धन के साथ वो अर्जित किया है हिंसा से अथवा व्यापार में ही दूसरे का कहीं से लिया है, तो वो अपने पाप को कम करने के लिए धन के रूप में देता है महात्माओं के पास, तपस्वियों के पास। जब वह धन देगा तो उसकी जितनी विपत्तियां है वो धन के साथ जो ग्रहीता होता है दान लेने वाला उसके पास वो लग जाता है। इसलिए साधु पुरुष भी दूसरे का दान ग्रहण नहीं करते, यदि करते हैं तो पुनः समाज में उसको वितरित कर देते हैं। तो दान के धन को यदि दान कर दे तो वह कोटि गुणा फल और प्रदान करता है। इसीलिए जो त्याग है वह शांति प्रदान करता है, यदि संग्रह करे तो उद्वेग हो जाए, 99 का चक्कर लग जाए कि हमको और 1 करोड़ हुआ है, थोड़ा 2 करोड़ करे, फिर 3 करोड़ करे, और उसको धन में अभिनिवेश हो जाएगा कि हम इतने बड़े धनी हो गए, फिर उसको अहंकार आएगा और अहंकार आने से व्यक्ति का अधः पतन हो जाता है। इसलिए जो धन है यह धर्म का साधन यदि विवेक हो तो है, और यदि विवेक भ्रष्ट हुए तो यह सीधे पतन का कारण बनता है। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा, वेन हमेशा दान करते रहो, जब नित्य दान करो, ब्राह्मणों को भोजन अन्न वस्त्र दान करो, कुएं खुदवाओ, जलाशय प्रदान करो, और जो पुत्री इत्यादि के पुत्र आए, भांजे आए, उनको हमेशा दौहित्र को दान दिया करो, और सोने इत्यादि का भी दान करो, वृक्ष लगाओ जिससे कि लोक का कल्याण हो, पक्षी वहां सुरक्षित रहें, पक्षी फल को ग्रहण करें, पक्षियों के फल ग्रहण करने से, पक्षियों के रहने से वह तीर्थ जो होता है उस तीर्थ में राही बटोही यात्री सब जब आराम करते हैं तो याद करते हैं यह जिसने लगाया बड़ा अच्छा काम किया, तो जो उसको सुख मिलता है उस सुख का हकदार, ये सब सत्कार्य करने वाला, पाठशाला बनाने वाला, अन्नदान कराने वाला, ये सबको जाता है, और साथ में उस प्रेरक को भी जाता है जो कहता है सत्कार्य करो, क्योंकि एक कर्म के 6 लाभार्थी होते हैं। उसी तरह यदि कर्म खराब हो जाए तो 6 नुकसान जिसके चलते खराब हो वह भी 6 नुकसानों का भागी होता है। कहा महाराज, दान तो किया जाए, अन्न का किया जाए, जल का दान करना चाहिए, और बछड़े सहित उत्तम गाय का दान करना चाहिए, क्योंकि गाय का दान करेंगे तो उससे दूध दही इत्यादि जो निर्मित होगा उससे यज्ञ होगा। भैंस का दान करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भैंस दान करके क्या करेंगे, उसके उससे न घी से हवन होने वाला है और न ही देवता को पूजन होने वाला है, और कटती बेचारी आज गाय ही है, तकलीफ यह है। इसलिए गोदान करने का शास्त्रों में फल बतलाया, और कुछ नहीं कर सकते तो जूते भी दान कर दो, क्योंकि जूते दान करोगे तो शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे, यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, और आपके पितर इत्यादि जब जाते हैं तो मार्ग कंटक से अवरुद्ध होते हैं उनके, यम के यहाँ जब जाता है मृतात्मा तो हैरान हो जाता है। तो ऐसे के लिए जब उसका ध्यान करके आप जूते दान कर दोगे तो कम से कम आपके पैर सुरक्षित रहेंगे, आपके पैरों को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपने दूसरे को दिया होगा वो आपको मिलेगा। यदि आपने दिया नहीं तो आप प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं है। इसलिए अन्नदान की महिमा में तो इतना तक बतला दिया कि आप महीने में दो बार जरूर ब्रह्म भोजन कराएं अपने घर में, नहीं तो अन्नदान करें, अन्यथा आप 15 दिन अन्न खाते हो, 30 दिन खाते हो, 2 दिन भी दान नहीं किया तो फिर आपके होने का कोई मतलब नहीं है। ये तो गांव के जो सुअर है ना, जो मैला बिस्टा खाते हैं, वो भी अपने पेट भर लेते हैं। यो भरने को तो पशु भी दुनिया में पेट भरते हैं। कथंचित सोधर भरा किन्न सूकर सावका, ये जो सुअर के बच्चे हैं छोटे छोटे जो उनके साथ चलते हैं भुंड, वो भी अपना पेट भर लेते हैं। और यदि आप में धर्म नहीं है, दान नहीं है, पुरुषार्थ जो शास्त्रोचित धर्म है नहीं है, तो आप मनुष्य कहलाने के पात्र नहीं है। आगे की कथा में वेन को भगवान विष्णु यही समझा रहे हैं, देखो दान नहीं कर सकते हो तो इस धरती पर पुत्र, पत्नी, माता पिता और गुरु, ये 5 तीर्थ है। इन 5ों तीर्थों का सेवन करो शास्त्रोचित मर्यादा में तो ये तुमको पाप से तरण करा देंगे। कहा कि तीर्थ तरति पापम यस्मादिति तीर्थम, जिससे पापों का तरण हो जाता है। जाकर हम स्नान कर लेते हैं तो तीर्थों में पाप धुल जाते हैं, तो घर भी अपना तीर्थ है। वो तो पिक्चर में भले गाने गाते हैं, कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी, कोई जाए हरिद्वार, हमको सबसे तीर्थ बड़ा है अपना ही घर द्वार। तुम्हारा प्यार न छूटे कभी घर द्वार न छूटे, तो जो घर है वह घर तीर्थ है, जहां पर सब लोग संतुष्ट हों। और ये शास्त्र की पंक्ति है, जो पिक्चर में आता है वो कहीं न कहीं से उसमें जो अच्छाइयां होती है वो महापुरुषों के सिद्धांतों से होती है। तो यह पद्म पुराण में यहां वर्णन है कि ये जो तीर्थ हैं इन तीर्थों का सेवन करना चाहिए। भगवान ने कहा सुनो मैं तुझे बतलाता हूं, प्राचीन काल में एक काशी नाम की बड़ी सुंदर पुरी थी जिसको आज वाराणसी कहते हैं, गंगा तट से के किनारे बसी हुई है, भगवान विश्वनाथ के त्रिशूल पर है। वहां एक वैश्य रहते थे जिनका नाम था क्रिकल। उनकी पत्नी बड़ी ही पति के प्रति प्रेम करने वाली थी, आज्ञा पालन करने वाली थी, जिसका नाम था शुक्ला। नाम तो शुक्ला था ही, उसके गुण भी बड़े अच्छे थे, जिस पर पति हमेशा मुग्ध रहते थे, हमेशा वो व्रतों का पालन करती थी, विवेक संपन्न थी, वैदिक और पौराणिक कथाओं को ब्राह्मणों से सुना करती थी और तीर्थों का सेवन करती थी, क्योंकि काशी जैसा तीर्थ जहां साक्षात भगवान विश्वनाथ विराजमान है। वह जितना तीर्थ सेवन तो करती थी लेकिन उससे कम अपने पति में उसका प्रेम नहीं था। वो पति को कहती थी कि आप ही हमारे तीर्थ हो, क्योंकि पति के चरणों में सारे तीर्थ बसते हैं। यदि पति को छोड़कर के पत्नी कहीं दूसरे जगह जाए तो यह बड़ी ही बुरी बात है, क्योंकि पति ने पत्नी के सुरक्षा का संकल्प लिया है। महाराज मनु ने तो इतना कहा कि पत्नी जो है वह पति की शिष्या है, विवाह में पति जान लेकर बारात लेकर जाता है और पत्नी को वहां से आहुति दिलवा करके लाजा होम करा करके मंत्र देकर के शिष्य बना करके लाता है। जनोई में जैसे आचार्य लोग शिष्य का हृदयालंबन करते हैं और कहते हैं कि तेरी वाणी और मेरी वाणी एक हो जाए और आज से मेरे वाणी का उल्लंघन मत करना, उसी तरह से पति भी विवाह में पत्नी के अंगों का स्पर्श करता है और फिर ध्रुव तारा दिखाता है, दिन में सूर्य को दिखलाता है और कहता है जैसे ये अचल हैं वैसे हमारे और तुम्हारे संबंध अचल होने चाहिए, एक दूसरे पर परस्पर विश्वास होना चाहिए, इसलिए दोनों एक दूसरे को विश्वास से जीत लेंगे। और जब दूसरे एक दूसरे को विश्वास से जीत लेते हैं तो एक गाड़ी में जैसे दो पहिए होते हैं और दोनों मिलकर समान रूप से कार्य करते हैं, उस तरह से जो दाम्पत्य जीवन है वह चलता है और उसमें दोनों की सहभागिता होती है। कहा कि पति जो यज्ञ करता है उसमें स्त्री का आधा है, क्योंकि वामांगी है स्त्री, यदि वाम भाग में रह करके वह जितना पति दान करेगा वह सब पत्नी प्राप्त कर लेती है। एक बार की बात है, पुरुषों में आपस में चर्चा हो रही थी कि हम लोगों को तीर्थ यात्रा पर चलनी है, इसलिए जो क्रिकल थे इन्होंने सुब्रता से कहा, देखो प्यारी मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं और तुम्हारा शील, तुम्हारा गुण, तुम्हारा आचरण इतना पवित्र है कि तुम घर में रहना, कहीं इधर उधर मत जाना, क्योंकि लोगों की नजर बड़ी खराब है, स्त्रियों को अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। पत्नी ने कहा कि मेरे तीर्थ आप ही हो और यदि आप यहां से चले जाओगे तो मेरी क्या दशा होगी, ऐसा करो आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। सीता जी जो थी वो भगवान राम के साथ जंगल गई थी, तो आप हमारे तीर्थ चले जाओगे तो हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे, वहां तीर्थ में जाएंगे तो आपकी सेवा करेंगे। पति ने सोचा रास्ते इतने कठोर हैं, ये हमारी पत्नी इतनी प्रिय है, घर में रहेगी तो सुरक्षित रहेगी और रास्ते में इसको कष्ट पहुंचेगा, न जाने इसकी क्या दशा होगी, यह तो मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है, यदि ये नहीं रहेगी तो हमारा गृहस्थ धर्म जो है इधर उधर हो जाएगा, बच्चों की रक्षा कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा, तो कम से कम यह सुरक्षित घर में रहेगी तो हमें कुछ होता भी है तो बच्चों की देखभाल कर लेगी, गृहस्थ आश्रम संभल जाएगा, क्योंकि पिता चाह करके भी बच्चों को नहीं संभाल पाता है जितना माता